मैं रुचि सिंह, MA द्वितीय वर्ष का 15वां प्रश्न पत्र हिंदी समीक्षा करने जा रही हूँ। मैं निर्मला जैन द्वारा रचित हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी करने जा रही हूँ। भूमिका: हिंदी आलोचना के विकास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आलोचना धर्मी विविध प्रयासों के बीच ठेठ आलोचना का स्पष्ट बोध जरूरी है। अनुसंधान, सिद्धांत निरूपण, पांडित्यपूर्ण अध्ययन, साहित्य इतिहास आदि आलोचना के लिए उपयोगी हो सकते हैं, खुद आलोचना नहीं हो सकते। आलोचना के इस वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बहुत पहले कर चुके थे। वे सही अर्थ में हिंदी के पहले इतिहासकार थे। अपने इतिहास में कवियों के मूल्यांकन के संदर्भ में उन्होंने अनेक आलोचनात्मक सूत्र प्रस्तुत किए। ये सूत्र आज भी आलोचना कर्मियों के लिए प्रेरणादायक है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में इस विषय में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं थी। कालक्रम में भारतेंदु का नाटक शीर्षक शास्त्रीय निबंध पहले प्रकाशित हो चुका था, पर शुक्ल जी ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन को ही दिया, क्योंकि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। शुक्ल जी के उपर्युक्त कथन से उनकी आलोचना संबंधी अवधारणा भी ही स्पष्ट नहीं होती, समालोचना का वास्तविक स्वरूप भी उद्घाटित होता है। शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही होगा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संबंधी अनुसंधान परक निबंधों और शिव सिंह सरोज तथा मिश्र बंधु विनोद जैसे इतिहास परक ग्रंथों का उल्लेख भी उन्होंने आलोचना के अंतर्गत नहीं किया। आलोचना की ऐसी सुस्पष्ट अवधारणा और व्याख्या के बावजूद यदि आज हिंदी आलोचना के इतिहास के अंतर्गत अनुसंधान इतिहास, काव्य सिद्धांत, अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि विषयों से संबंधित ग्रंथों और ग्रंथकारों का बखान किया जाता है, तो यह घनघोर घपला ही कहा जाएगा। ऐसे सर्वग्रासी प्रयासों से हिंदी आलोचना की समृद्धि का भ्रम भले ही विस्तार पाता हो, वास्तविक आलोचना के विकास की पहचान धुंधली हुई होती है। कहना न होगा कि आलोचना का कोई इतिहास एक कुहासे को साफ करके ही आलोचना का सही संदर्भ और उसकी सार्थकता की सच्ची कसौटी रचना ही हो सकती है और होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि समकालीन रचनात्मक साहित्य की समीक्षा सार्थक आलोचना की पहली जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से आलोचना के विकास में गंभीरता से की गई पुस्तक समीक्षाओं की भूमिका असंदिग्ध है। ऐसी ही समीक्षाओं के बीच से अक्सर आलोचना का विकास होता है, बशर्ते समीक्षक की वस्तुनिष्ठता और ईमानदारी संदेहातीत हो। उल्लेखनीय है कि हिंदी में आलोचना का सूत्रपात ऐसी ही समीक्षाओं के बीच हुआ। साहित्य के ऐसी महत्वपूर्ण और सार्थक समीक्षाओं के माध्यम से समकालीन साहित्य का मूल्यांकन ही नहीं होता, सामान्य सिद्धांतों और प्रतिमानों का निर्णय भी होता चलता है। इसी क्रम में पूर्ववर्ती रचनाओं और रचनाकारों के पुनर्मूल्यांकन के प्रयास भी सामने आते हैं। सिद्धांत निरूपण और पूर्वकालीन कृतियों की ये व्याख्याएं समकालीन रचनाओं की समीक्षाओं के संदर्भ में ही प्रासंगिकता प्राप्त करती हैं। यही प्रासंगिकता आलोचना के विकास क्रम में किसी नए या पुराने कवि की समीक्षा तथा सैद्धांतिक आधार के संग्रह त्याग की कसौटी होती है। हिंदी आलोचना के किसी इतिहास का मुख्य लक्ष्य इसी प्रासंगिकता की प्रतिष्ठा होना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर हिंदी आलोचना का पूरा परिदृश्य ही नए रूप में उद्घाटित तो होता है। आज आवश्यकता हिंदी आलोचना के इतिहास को उसे के समुचित परिदृश्य में देखने की ही है। इस कृति से इसी परिदृश्य का साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया है। हमारा प्रयत्न रहा है कि आलोचना के इतिहास के साथ उसकी अद्यतन कला सीमा तक यात्रा की जाए, अंतिम बिंदु तक नहीं। जाहिर है कि समीक्षात्मक लेखों की गहमा गहमी के बीच से जिक्र उन्हीं का उचित जान पड़ता है जिन्हें एक हद तक समय की कसौटी ने भी मान्यता दे दी है। पुस्तक में ग्रहण त्याग विस्तार संकोच और पारस्परिक अनुपात का निर्वाह निजी विवेक पसंद नहीं के आधार पर ही किया जा सकता है, ऐसा ही कहने का प्रयास किया गया है। इस विवेक से सबकी सहमति हो न यह संभव है, न ही इसकी कोई आकांक्षा या दावा है। प्रयास अपनी जगह है, सफलता असफलता का निर्णय तो उनके हाथ में है जो इसके संभावित विज्ञ पाठक होंगे।